ये जो दिन मुकर्रर कर दिए जाते हैं, ख़ास ओकेजन, इंसान एक नफसियाती वजूद है, इनसे असर लेता है, माहौल, सोहबत उस पर एक असर डालती है। ये बताइएगा कि जब हम किसी भी इबादत पर अमल करते हैं तो उससे हमारी भी एक तहजीब जन्म लेती है। आप देखिए, हमारे यहाँ बरसग़ीर में रमज़ान आता है तो एक फेस्टिविटी के तसव्वुर है, रमज़ान से पहले कुछ खुसूसी पकवान है, बच्चों की खुशी होती है, घर का माहौल तब्दील हो जाता है। इबादत तो है फ़र्ज से मुतल्लिक, उसके तकवे के लिए, लेकिन इंसान जब किसी चीज़ पर अमल करता है तो उससे ये चीज़ें भी पैदा हो जाती हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये जो हमारी एक तहजीब बन गया है रमज़ान, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए या इसमें कुछ इस्लाह की ज़रूरत है?
ये बात यह है कि मैं इससे पहले भी तवज्जो दिला चुका कि इंसान कोई महज एक अकली मशीन नहीं है। यानी मंतिक के तरीके के ऊपर आप सुगरा कुबरा कायम करके इंसान को नहीं समझ सकते। इंसान को जब आप किसी चीज़ से मुतल्लक करेंगे, वो उसके माशर्ती और उसके सियासी और समाजी वजूद का हिस्सा बनेंगे।
ठीक,
ये हो नहीं सकता कि ना बने। देखिए, नमाज ही को आप सामने रखें, नमाज के लिए एक मस्जिद बनाई जाती है, मोहल्ले में किसी को इमाम मुकर्रर किया जाता है, 5 वक्त हम घर से निकल के मस्जिद की तरफ जाते हैं, सब लोगों से मिलते मिलाते हैं, इससे भी एक तहजीबी रवायत वजूद में आती है। यानी ये हकीकत है कि अगर आप देखें किसी मोहल्ले में, ख़ास तौर पर मुसलमानों का मोहल्ला है, वहाँ मस्जिद मौजूद है, तो मगरिब की नमाज में, क्योंकि लोग ताखीर नहीं कर रहे होते, तो बारहा ये बड़ा खूबसूरत मंज़र सामने आता है कि आप भाग रहे हैं, आपकी दाढ़ी से पानी टपक रहा है, आप जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि आप मस्जिद में जाएं, एक दाएं से आ रहा है, एक बाएं से आ रहा है। तो इससे एक मज़हब के साथ, दीन के साथ ताल्लुक़ का शहूद होता है, ज़हूर होता है, और ये ज़हूर मतलूब है, ये होना चाहिए।
अच्छा,
इसलिए कि जब ये नहीं होगा तो फिर आप असल में एक चीज़ को, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, तहज्जुद की नमाज़ आपने अकेले में पढ़ ली, अगर ये नहीं होगा तो फिर माशरत की सतह के ऊपर वो माहौल नहीं बनेगा कि जो माहौल आपकी आइंदा नस्लों को दीन की तरफ मतवज्जे करता है, जो गिर्दो पेश की बहुत सी तहरीकों को इस तरफ रागिब करता है, ये चीज़ फिर बनेगी नहीं। तो इंसान चूंकि अपनी नफ्सियात के लिहाज से ऐसा ही वाक़ हुआ है कि उसके यहाँ कोई चीज़ भी अगर आएगी तो वो फौरी तौर पर उसके समाज से, उसकी माशरत से, उसकी तहजीब से, उसकी सकाफ़त से मुतल्लक हो जाएगी। होगी तो वो असल में उसकी रवायत बनती है, रवायत बनती है तो उसका पूरा वजूद उसमें एक ख़ास तरह का एहतजाज़ महसूस करता है, और इस तरीके से वही चीज़ जो सादा सूरत में करनी ज़रा मुश्किल थी वो आसान भी हो जाती है, और आइंदा नस्लों के लिए उसमें बहुत कुछ तरगीब का अहतमाम भी हो जाता है। यही सूरत हाल रमज़ान पैदा कर देता है। रमज़ान का पूरा महीना है, ये महीना एक ही है जो मुकर्रर कर दिया गया, यानी यूँ नहीं किया गया कि लोग अपनी अपनी सहूलत के मुताबिक 30 रोज़े रख लें जब भी चाहें एक महीने में। तो जिस तरह नमाज के मामले में ये नहीं किया गया कि आप घर ही में पढ़ लें, एक मस्जिद बनाई जाती है, माबद में आप जाते हैं, वहाँ सब इकट्ठे होते हैं, एक इमाम की क़यादत में पढ़ते हैं, इसी तरह एक महीने का मुकर्रर करना रोज़े को भी एक इनफरादी इबादत से आगे बढ़ाकर एक इज्तिमाई इबादत बना देता है। यानी अब सारी की सारी कौम रोज़े रख रही है, लोग सहरी के वक्त उठ रहे हैं, आप जिस घर में देखते हैं वहाँ से रोशनी नज़र आ रही है, एक दूसरे की आवाज़ें सुन रहे हैं, जो हमारे पुराने मोहल्ले थे उनमें तो एक समा पैदा हो जाता था उसके नतीजे में। तो ये सब चीज़ें आपके अपने वजूद पर असरानंदाज़ होती हैं, आपकी नफ्सियात पर असरानंदाज़ होती हैं, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी इंतशार से निकालती हैं, आपके बच्चों के लिए भी एक तहजीबी रवायत पैदा करती हैं। आप मस्जिद में जाते हैं, रोज़ा खोलते हैं, मिल के रोज़ा इफ्तार करते हैं, सहरी का अहतमाम करते हैं, ये सब चीज़ें इंसान की तहजीबी रवायत बनती हैं, बननी चाहिए। अलबत्त इससे आगे बढ़ कर बाज़ औक़ात लोग कोई बिदत पैदा कर लेते हैं, उससे हर हाल में बचना चाहिए। इसलिए कि हमें ये तवज्जो दिलाई गई है, बल्कि मुतनब्बे किया गया है कि दीन में अपनी तरफ से कोई नई चीज़ पैदा ना करो, दीन में एहदास नहीं होना चाहिए, और ये बहुत तंबीह के साथ फरमाया है कि अगर कोई नया काम ऐसा करोगे कि जो दीन की हैसियत से अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर नहीं किया, तो इसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि तुम गुमराही में पड़ जाओगे। तो ये तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कुछ दीन में बताया गया है, नमाज पढ़नी है, उसके लिए मस्जिद बनाना, अच्छी मस्जिद बनाना, मस्जिद में कालीन बिछाना, मस्जिद में सफ़ें बिछाना, मस्जिद में हाजिर होने के लिए आदाब मुकर्रर करना, इमाम मुकर्रर करना, मेहराब का अहतमाम करना, मस्जिद को एक खुसूसी हैसियत देना, ज़ाहिर है इनमें से कोई चीज़ भी मुकर्रर नहीं की गई, लेकिन ये आप से आप हो गया है। اسی طرح رمضان سے متعلق بھی بہت سی روایات بن گئی ہیں، تو وہ روایات جب تک بدعت کے دائرے میں داخل نہ ہوں اس وقت تک نہایت ہی عزیز، نہایت ہی محبوب ہیں، اور یہ پوری کی پوری انسانی شخصیت پر، بلکہ اس کی معاشرت پر، بلکہ اس کی تہذیب پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو رمضان اور روزہ، اسی طریقے سے نماز، اس کا اہتمام، جماعت، عیدین، جمعہ، یہ ہماری تہذیبی روایت کو پیدا کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں۔
ہم سب بہت ہی خوبصورتی سے اس پہلو کو آپ نے بیان کیا۔ آخری سوال آج کی نشست کا جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اسی سے متعلق، ہم نے آپ نے ایک لمبا وقت ملیشیا میں گزارا، اور وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر رمضان کا ایک ماحول ہوتا ہے، اور ایک بڑی منفرد روایت وہاں دیکھنے میں آئی کہ سارے لوگ افطار مسجد میں کرتے ہیں، اپنا اپنا جو کچھ بنایا ہے وہ آ جاتے ہیں اور مسجد ہی میں جمع ہو کر افطار کیا جاتا ہے، پھر نماز پڑھی جاتی ہے مغرب کی، عشاء تک ذکر و اذکار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بچے جو ہیں وہ روانہ ہوتے ہیں، اور بچے اس میں بہت شامل ہوتے ہیں اس پورے عمل میں۔ آخری چیز مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے کہا تہذیبی روایت بن جاتی ہے، ملیشیا میں آپ نے ایک وقت گزارا، وہاں پر آپ نے کیسے محسوس کیا کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو تہذیبی روایت بنایا ہے؟
کوئی شبہ ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں پر اس طرح کا انتشار نہیں پیدا ہوا جو ہمارے ہاں پیدا ہوا۔ ہمارے ہاں ایک لمبی تاریخ ہے جس میں جو کچھ پہلے کی تہذیبی روایت تھی وہ درہم برہم ہو کے رہ گئی، ان کے ہاں یہ نہیں ہوا۔ چنانچہ مذہب کی روایت، مذہب کے سوسائٹی کے ساتھ تعلق کی روایت، مسجد کی روایت، رمضان کی روایت، اسی طرح بچے کس طرح مسجد میں آئیں گے، ان کے لیے جگہ کیا مقرر کی جائے گی، وہ کس طرح دین سے اور اپنے والدین کے ذریعے سے اس روایت سے متعلق ہوں گے جس کو ہم مذہبی روایت کہتے ہیں، اس کا وہاں بہت اچھا اہتمام تھا، اور ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، یعنی محلے کی مسجد میں لوگ افطار کرتے ہیں، لیکن جیسا کچھ اہتمام ہم نے وہاں دیکھا اور جس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ مسجد کے ساتھ ایک ربط ہے پورے کے پورے معاشرے کا، یہ چیز ہمارے یہاں مفقود ہوتی جا رہی ہے، اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مذہب جب تک آپ کی تہذیب اور آپ کی تہذیبی روایت نہیں بنتا، اس وقت تک وہ سوسائٹی کے لیے کوئی زندہ حقیقت بھی نہیں بنتا، وہ اصل میں ایک انفرادی عمل ہو کے رہ جاتا ہے۔ ہم جب اپنے ملکوں سے نکلتے ہیں جہاں مسلمان بڑی تعداد میں نہیں ہیں، کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں تو ایک خلاصا محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان کی بستیاں ہیں، وہ وہاں رہ رہے ہیں، اور اس میں آپ کو رہنے کا موقع دیا ہے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ مذہب صرف آپ کے لیے خدا کا حکم ہی نہ رہے، وہ آپ کی تہذیبی روایت بھی بنے، آپ کی تہذیبی شناخت بھی بنے۔